नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक खास पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत, और उसी के एक अध्याय मनीषी के रूप में हमारी प्रत्यक्ष भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे।
जी, ये अध्याय वाकई बहुत गहरा है।
तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये मनीषी कौन है, मतलब समाज को दिशा देने में उसकी भूमिका क्या है? क्या सिर्फ तेज दिमाग होना ही मनीषी होना है या कुछ और बात है?
बिल्कुल। और देखिए, यहाँ सबसे पहली और जरूरी बात यह समझनी है कि पूज्य गुरुदेव के लिए मनीषी का मतलब सिर्फ बुद्धिजीवी या कोई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति नहीं है। उनके हिसाब से मनीषी वो है जिसका मन, जिसका अपना मन उसके वश में हो, जो अपने विचारों से अपने मन को चला सके, उसे दिशा दे सके। एक सूत्र वाक्य भी है, मनीषा अस्ति येषां ते मनीषाणा, मतलब जिनका मन उनके नियंत्रण में है वही मनीषी है।
अच्छा, तो ये बुद्धि से ज्यादा मन पर नियंत्रण की बात हुई। तो फिर पूज्य गुरुदेव जो बुद्धिमान और मनीषी में फर्क बताते हैं वो इसी आधार पर है।
हाँ बिल्कुल, वो एक जगह साफ कहते हैं, मनीषी नस्तु भवंती पानानी न भवंती। इसका मतलब है कि बुद्धिमान तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि वो पवित्र भी हों। देखिए, प्रतिभा होना एक बात है, लेकिन अंदर से पवित्र होना, नैतिक रूप से मजबूत होना, वो दूसरी बात है। और पूज्य गुरुदेव के लिए यही पवित्रता मनीषी का असली गुण है।
और ये पवित्रता आती कहां से है? ज्ञान से तो नहीं शायद?
ज्ञान से नहीं, तप से। पूज्य गुरुदेव तपा शक्ति और अंतः शोधन पर बहुत जोर देते हैं।
अच्छा।
तप यानी खुद को साधना, अनुशासन में रखना, और अंतः शोधन मतलब अपने मन की अंदर की सफाई करना। इसी तप और अंतः शोधन से जो पवित्रता आती है वही सच्ची मनीषा की आप कह सकते हैं नींव है।
तो आज के जो बुद्धिजीवी है, लेखक है, विचारक है, उनमें ये कमी दिखती है।
पूज्य गुरुदेव का यही मानना था। वो कहते थे कि प्रतिभा तो दिखती है कई लोगों में, पर अक्सर वो अंदरूनी पवित्रता, वो नैतिक बल, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है।
वेरी करेक्ट।
और इसी वजह से उनके विचार समाज को वो सही टिकाऊ दिशा नहीं दे पाते जिसकी जरूरत है।
ये तो बहुत सोचने वाली बात है। अच्छा, तो फिर इतिहास में अगर देखें तो समाज को बनाने में, उसे दिशा देने में ऐसे पवित्र मनीषी की भूमिका कैसी रही है?
हाँ, पूज्य गुरुदेव प्राचीन भारत का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि दो तरह के विचारक मुख्य थे। एक थे ऋषिगण, वो तपस्या करते थे, आत्मनुसंधान करते थे और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, मतलब सूक्ष्म रूप से समाज के माहौल को, वाइब्रेशंस को बदलते थे,
पर्दे के पीछे रहकर एक तरह से।
हाँ बिल्कुल, पर्दे के पीछे रहकर। और दूसरे थे मुनिगण। मुनिगण चिंतन मनन करते थे, स्वाध्याय करते थे, लिखते थे, प्रवचन देते थे। वो प्रत्यक्ष साधनों से, मतलब सीधे सीधे लोगों की सोच को बदलते थे, उनके विचारों को साफ करते थे, उन्हें दिशा देते थे।
अच्छा, तो एक सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहे थे, दूसरे स्थूल यानी प्रत्यक्ष स्तर पर।
जी, और पूज्य गुरुदेव का जोर इसी विचार शोधन पर था। वो मानते थे कि समाज को बदलने का असली तरीका हथियार या लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि अच्छे, मजबूत, पवित्र विचारों से बुरे और कमजोर विचारों को काटना है। विचारों की विचारों से काट,
विचारों की शक्ति। हाँ ये तो है। इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने, अच्छे भी बुरे भी।
बिल्कुल हैं। देखिए, नकारात्मक उदाहरण लें तो हिटलर का। उसने नीचे के दर्शन को कैसे तोड़ मड़ोड़ कर इस्तेमाल किया, उन विचारों का गलत इस्तेमाल करके नाजीवाद फैलाया, लाखों लोगों के मन में जहर भरा और कितना भयानक नरसंहार हुआ। ये भटकी हुई अपवित्र मनीषा का ही परिणाम था।
हाँ, ये तो बहुत ही भयानक उदाहरण है कि कैसे विचार विनाश भी ला सकते हैं, लेकिन सकारात्मक उदाहरण भी तो होंगे।
जरूर हैं, और बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे कार्ल मार्क्स को देखिए, उनकी पुस्तक दास कैपिटल ने दुनिया भर के मजदूरों के हक की लड़ाई को एक वैचारिक आधार दिया। रूसो के विचारों ने प्रजातंत्र की सोच को मजबूत किया। अब्राहम लिंकन और हैरियट स्टो ने अमेरिका में दास प्रथा को खत्म करने के लिए वैचारिक जमीन तैयार की।
और भारत में?
भारत में तो बहुत उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने पूरी नैतिक क्रांति ला दी, और हमारे अपने समय में महात्मा गांधी जी ने, अपने विचारों, अपने सत्य और अहिंसा के प्रयोगों से, अपने तप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। इन सब ने अपने विचारों और उस विचार के पीछे की पवित्रता से युग बदला।
ये बात बिल्कुल सही है। जब विचार के पीछे एक नैतिक बल होता है, पवित्रता होती है, तो उसका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव का अपना संकल्प और काम शुरू हुआ होगा। उनका लक्ष्य क्या था?
जी, उनका मुख्य लक्ष्य था लोकमानस, यानी आम जनता की सोच को एक सही सकारात्मक दिशा देना। वो एक ऐसा वैचारिक प्रभाव बनाना चाहते थे जो समाज को ऊपर उठाए, जिसे वो कहते थे सद्विचारों की प्रतिष्ठापना। और साथ ही वो चाहते थे कि लोगों के व्यक्तित्व में पवित्रता और प्रखरता दोनों का संगम हो, मतलब अंदर की सफाई भी हो और बाहर की चमक भी।
और इसके लिए उन्होंने साधन भी मनीषा को ही चुना, विचारों की शक्ति को।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने माध्यम बनाया विचारों को, इसीलिए उन्होंने इतना विशाल युग बदलने वाला साहित्य रचा,
जैसे अखंड योति पत्रिका।
दशकों तक उसके जरिए वो विचार फैलाते रहे।
जी,
उनका तरीका दोहरा था आप कह सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष यानी साहित्य लिखना, लोगों से मिलना, मार्गदर्शन देना, और दूसरा था परोक्ष तरीका, अपने तप और साधना से एक सूक्ष्म आध्यात्मिक माहौल बनाना और साथ ही वैज्ञानिक अध्यात्म पर शोध को बढ़ावा देना।
अच्छा, ये वैज्ञानिक अध्यात्म, ये क्या है? ये शब्द थोड़ा नया सा लगता है।
पूज्य गुरुदेव का मानना था कि हमारी जो प्राचीन ऋषि परंपरा है, उसका ज्ञान, जैसे वेदों के सूत्र हैं, गायत्री मंत्र की शक्ति है, यज्ञ का विज्ञान है, ये सब कोई अंधविश्वास नहीं है। वो चाहते थे कि इस गहरे ज्ञान को आज की भाषा में, मतलब तर्क, तथ्य और प्रमाणों के साथ दुनिया के सामने रखा जाए,
ताकि आज का पढ़ा लिखा तार्किक समाज उसे समझ सके और अपना सके।
बिल्कुल, उन्होंने आत्मानुसंधान यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मन की शक्तियों का विकास कैसे हो, प्राचीन आयुर्वेद को कैसे फिर से जीवित किया जाए, इन सब विषयों पर शोध की एक दिशा दी। असल में वो अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ना चाहते थे।
ये तो बहुत ही दिलचस्प और आगे की सोच है। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें, तो ये कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार सच्चा मनीषी वो है जिसमें सिर्फ तेज बुद्धि ही नहीं बल्कि तप से कमाई हुई अंदर की पवित्रता भी हो।
एकदम सही, यही सार है। ऐसे ही विचारकों की जो सकारात्मक सोच होती है, जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, वही समाज में असली टिकाऊ बदलाव ला सकती है, क्योंकि विचारों में बहुत ताकत है। दिशा सही हो तो निर्माण होता है, गलत हो तो विनाश।
और आज के समय में तो ये बात और भी ज्यादा लागू होती है। चारों तरफ से इतनी सूचनाएं आ रही हैं, इतना शोर है, ऐसे में वो गहरी, पवित्र और दिशा देने वाली सोच, उसकी जरूरत तो शायद पहले से भी ज्यादा है।
बिल्कुल,
और ये सिर्फ बड़े बड़े विचारकों या लेखकों की ही जिम्मेदारी नहीं है शायद।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि हम जैसे आम नागरिक अपनी रोज की जिंदगी में मनीषा के इन छोटे छोटे तत्वों को कैसे ला सकते हैं, जैसे अपने विचारों के प्रति थोड़ा सचेत होना, उन्हें सकारात्मक रखने की कोशिश करना, अपने अंदर की शुद्धि के लिए थोड़े थोड़े प्रयास करना। अगर बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे तो इसका समाज पर धीरे धीरे सही पर एक सामूहिक असर क्या पड़ सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।